एक से मारा मुष्टिका बलराम जी ने, तो उसको वज्र रंग घुसा, वज्र का वेग इस तरह से मारा, स आहत सपदी विशीर्ण मस्तक, स आहत जब प्रलंबा से मारा गया, आहत हुआ तो सपदी विशीर्ण मस्तक, मुष्टिका का प्रहार होते हैं उसके सिर के कई टुकड़े हो गए, विशीर्ण विशेषण शीर्ण हो गए, कई टुकड़े हो गए सिर के। मुखा बमन रुधिर मपस्मृत सुर, और मुख से खून उगलता हुआ अपस्मृता बेहोश हो गया। महारवम व्यसुरपत समीरयन, महारवम समीरयन बहुत बड़ा शब्द करता हुआ, जोर से चिल्लाता हुआ आह करता हुआ अपतत व्यसु, बिना प्राण के होकर जमीन पर गिर पड़ा, जैसे गिरीर जथा मघवत आयुधा होता। फिर उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मघवत भगवान के इंद्र के वज्र से मारे जाकर के पर्वत गिरे, जैसे कोई पर्वत गिरता वैसे गिरा, तो वहां मारने इतना जोर से मारा कि उसको उपमा दे रहे हैं कि जैसे वज्र से इंद्र पर्वत को मारते हैं, और गिरा तो असुर इतना बड़ा था, जमीन पर गिरा तो लगता था जैसे पहाड़ गिर पड़ा, बहुत भारी पर्वत गिर पड़ा, उस तरह से जैसे इंद्र ने जब पर्वत के पंख काटे थे तो पर्वत गिरे थे जहां तहां धड़ाम से, गिरी जथा मघवत आयुधा होता। कथा कहते समय सुखदेव गोस्वामी का चित्त इन दृश्यों में लगा हुआ है, तो वे उसके गिरने का उदाहरण देते हैं कि लगा जैसे पर्वत गिरा, इतना बड़ा असुर था वो। बाद में उसका असली रूप प्रकट हो गया था, इसलिए बहुत बड़ा हो गया, पहले तो गोप के वेश में जाकर के खेल कर रहा था। दृष्ट्वा प्रलम्बम निहतम बलेन बलशालिना, तो बच्चे कुछ देर तक बहुत शोक में थे कि बलराम को, बलराम कहाँ चले गए, तो वे समझ रहे थे कि वो कोई असुर लेकर के भाग गया, क्योंकि जब आकाश में उड़ा था तो लड़कों ने देखा था कि इधर तो गोप सखा के रूप में छोटा था, लेकिन जैसे जैसे आकाश में उड़ा वैसे वैसे बड़ा होता जाता तो वो लोग बहुत शोक में थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बलशालिना बलेना परम बलवान बलराम के द्वारा प्रलंबम निहतम, प्रलंब पूरा पूरा नितरम हतम जान से मार दिया गया, तो गोपा सुविस्मिता, गोप सब बड़े आश्चर्य में पड़े, और साधु साधु इति वादिना, बहुत अच्छा कहने लगे बलराम जी के लिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और निकट में आकर के आशीषों भी ग्रंथस्थम आशीर्वाद देने लगे, इसी तरह से सदा सुखी रहो चिरंजीवी रहो, तुम्हारे तुम्हारा बैरी इसी तरह से मर जाए जैसे ये मर गया, वो सब सखा आशीर्वाद दे रहे हैं। ये है भक्ति अस्तु में, जनरली संसार में लोग भगवान से आशीर्वाद चाहते हैं कि भगवान कृपा करो, हम जय जगदीश हरे, भगवान से विनय करते हैं हम पर कृपा कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, लेकिन यहाँ देखिए भगवान को आशीर्वाद दिया जा रहा है, आशीष अभिग्रंतस्तम आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी प्रकार से अपने भाई कृष्ण के साथ चिरंजीवी रहो, सुख से रहो, तुम्हारे जीवन में कोई भी विघ्न आवे तो वह नष्ट हो जाए भगवान की कृपा से। ये नहीं जानते थे कि बलराम जी स्वयं भगवान, उनको आशीर्वाद दे रहे, यही है प्रेम। और प्रशंसु तदर्हणा, और प्रशंसु प्रशंसा कर रहे थे, खूब धन्य हो तुम, बलराम जी इसके योग्य भी थे। प्रत्यागतम इवालिंग, ऐसा लगता था उन्हें जैसे मर करके बलराम आ गए हों, तो आलिंगन कर रहे थे सब भारी वर्ष प्रेम विह्वल चेत सब, अच्छे प्रेम से गोपों के आंखों में आंसू भर रहे थे, रोमांच हो रहा था, चित विह्वल हो रहा था, उसका आलिंगन कर रहे थे। और जिस समय गोप बलराम जी का आलिंगन कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, उसी समय देवता भी आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे, और साधु साधु बहुत अच्छा कह करके
प्रशंसा करने लगे।
देवता आपने पढ़ा था पहले से ही भगवान की लीला में शामिल थे, वे भी गोप वेश में इस लीला में थे, और जब प्रलंबासुर मारा गया तो देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। तो पापे प्रलंबे निहते देव परम निर्वृता, प्रलंबे पापे निहते, महापापी प्रलंबासुर के मारे जाने पर देव परम निर्वृता, निर्वृता मन सुखी हो गए, परम सुखी हो गए देवता। उनको बहुत मन में बेचैनी रहती थी, दुखी थे, ये बहुत दुष्कर्मी था, इसीलिए यहाँ पापे प्रलंबे कहा गया, मूर्तिमान पाप था प्रलंबासुर। तो बहुत सुखी हो गए और अब वर्षन बलम माले बलराम जी पर फूल की माला बरसाने लगे, फूल बरसाने लगे और सशंसु साधु साधु की साधु साधु बहुत कहने लगे। अच्छा, एक अद्भुत लीला का आवेश है भगवान के सखाओं में। इतना बड़ा असुर मारा गया, बलराम जी का अपहरण हुआ था, लेकिन उन्हें खेलने में इतनी आसक्ति थी कि फिर भी खेल नहीं रोके, खेल चालू रहा उनका। और इसका कारण यह है कि वे किसके साथ खेल रहे थे, परब्रह्म परम आनंद घन भगवान के साथ खेल रहे थे। इसलिए इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, फिर भी खेल में आसक्त थे। सुदेव गोस्वामी कहते हैं 19वें अध्याय में, क्रीड़ा सक्तेश गोपेश, गोप सब क्रीड़ा में आसक्त थे। यहां ऐसी कोई घटना हो जाए, इतना बड़ा असुर कोई गिरे और किसी का अपहरण करके ले जाए, मान लीजिए राष्ट्रपति को ले जा रहा हो और वो पहाड़ जैसा असुर गिर जाए, मर जाए, सब कुछ बंद हो जाएगा देखने के लिए, या कुछ तमाशा होगा, ये होगा वो, और जो काम होता रहेगा वो बंद हो जाएगा, चारों ओर न्यूज फैलेगा, ये हुआ वो हुआ ये हुआ। लेकिन वहां इतनी बड़ी घटना हुई और बच्चों के खेलने में इतनी आसक्ति थी कि वो मर गया, लाश गिरा है उधर और खेल चालू। ये है नित्य विहार भगवान, इतनी आसक्ति है क्योंकि वो खेल रहे कृष्ण के साथ, कृष्ण को छू रहे हैं, कृष्ण को देख रहे हैं, कृष्ण के साथ बातें कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की घटनाएं तो होते ही रहेंगी। उन्होंने सोचा ये क्या है, ऐसे रोज रोज असुर आते रहते हैं। खेल उनका चलता ही रहा। अरे वो तो भगवान के साथ खेल रहे थे। इस जगत में भी आप देखते हैं कि कितनी कितनी घटनाएं होती रहती है अनवांछित, फिर भी लोग अपना खान पान दुनिया का काम करते ही रहते हैं, है कि नहीं? यहां तक कि अपने घर में भी कोई मर जाता है फिर भी चलता रहता है अपना काम। प्राकृत जगत में जबकि जीव दुख भोग रहा है परंतु तो फिर भी वो नहीं चेतता है, तो फिर अप्राकृत जगत में क्यों ये रुकेंगे? तो भगवान के साथ हम लीला कर रहे हैं। तो क्रीड़ा सक्तेश गोपेशु, जब सभी गोप इस तरह कृष्ण के साथ क्रीड़ा में आसक्त थे, लग गए फिर खेलने में, तो तब गावो उनकी गायें दूर चारणी, वो दूर चली गई, कोई देख नहीं रहा था, ये लोग खेलकूद में आसक्त थे और गौएं घास चरते चरते, स्वयरम चरण थे बिबसु तृण लोभे न गहवरम, नए नए घास के लोभ से वो चरते 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 गहवरम बनम बिबसु, बहुत घोर वन में प्रवेश करते। वे लोग आ सकते हैं खेलने में, तो गौएं आ सकते हैं चरने में। गौओं की आसक्ति भी स्वाभाविक है क्योंकि वो वृंदावन की घास चर रही है, वृंदावन का घास चिन्मय है, दिव्य है, और भगवान चराने के लिए लाए हैं उनको, तो इसलिए चर करके पेट भर लेना उनके लिए आवश्यक है, इससे कृष्ण को सुख मिलेगा। तो चरने में आवेश हो गया गौओं का। गोप सखा सब खेलने में आसक्त हो गए और गौएं चरने में आसक्त हो गई, तो चरते 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 गहवरम बिबसु तृण लोभे न। और कौन कौन गायें प्रधान थे इसलिए गौओं के लिए पहले कह दिए, अजा गावो महिष्यश्च निर्विशंतो बनाद बनम, भगवान गौएं चराने ले जाते थे तो उनके साथ कुछ बकरियां भी जाती थी, बकरी चराते थे, ये इकोनॉमिक दृष्टि से बहुत अच्छा है। आज भी लड़के गांव में गाय ले जाते हैं चराने के लिए, तो बकरी भी बच्चा रखते हैं, भैंस रखते हैं। देखिए भगवान चरा रहे अजा तावह महिष्यश्च, महिष्य मतलब भैंस, गाय बकरी, गाय और भैंस ये सब चर रहे थे। निर्विशंतो बनाद बनम, वन से वन मतलब एक वन से दूसरे वन में चरते 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 ये बहुत दूर चली गई, वन था ही चारों तरफ। इशिका तविम निर्विश, इस तरह एक वन से दूसरे वन में जाते हुए इशिका अटविम मुंजाटवी में चली गई। इशिका कहते हैं मुंज को, मुंज जानते हैं सभी लोग, मुंज नहीं जानते हैं, नहीं बांस जैसे नहीं है, बांस से बहुत छोटा छोटा है, बांस तो बहुत बड़ा बड़ा होता है, मुंज उंगली जैसा पतला पतला होता है, इधर तो है भी नहीं बताया जाए। हाँ हाँ रस्सी बनाते हैं उसमें, उसकी रस्सी बनाते हैं, गांव में भी खाट बनाते हैं उसमें रस्सी बनाते, उसको मुंज कहते हैं। तो एक जगह मुंज का वन था बहुत घनघोर, तो घूमते घूमते जाते जाते वे मुंजाटवी में निर्विदिश प्रवेश कर गए। और क्रंदंतो दाव तरसिता, इतना घाम उगा हुआ था उस समय वहां सूरज का प्रचंड घाम, कि उससे बहुत दुखित हो गए और उन्हें बहुत प्यास लग गई गऊओं को, और वो लगी बाएं बाएं करके चिल्लाने। उधर हरि सूर्य जी टीकाकार कहते हैं, थोड़ा संकेत करते हैं कि इस तरह से भगवान को छोड़कर को तृण के लोह में पड़ने पर तो यही दशा होगी। तृण के लोह से एक वन से दूसरे वन में जा रहे हैं, लेकिन यह केवल एक विनोद है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में ऐसी व्यवस्था की है ब्रज में कि एक जगह गर्मी के दिन में भी कोई घाम नहीं, कोई ताप नहीं, लेकिन कहीं कहीं भीषण ताप है। वो लीला सौष्ठव के लिए ऐसी व्यवस्था किया रहता है, तो वहां बहुत घाम था, तो गौए तरसिता प्यास से व्याकुल हो गई और क्रंदंत रोने लगी, मतलब डकारने लगी। इसी बीच तब तक गोपों का आवेश टूटा खेल से, तो उन्होंने ध्यान दिया गौए कहाँ है, गौओं का पता नहीं है, और सब खेल छोड़ करके चले अपने अपने गौओं को जोहने के लिए। अरे बाप रे बाप, हम तो खेलने में आ सकते हो, हमारा सारा धन इधर उधर कहाँ गई गौ, सब दौड़े खोजने के लिए। ते अपश्यंतः पशुन गोपा कृष्ण रामादयस्त था, तो उसमें कृष्ण और राम दोनों भी दौड़े, भगवान भी लीला कर, अरे गौ कहाँ चली गई, अभी तो यहीं चल रही थी, इतना देर से तुम लोग आसक्त हो तो गौ चली नहीं जाएंगी। वो अब सब लोग दौड़े अपना अपना डंडा लेकर के, अपना गमछा या जूता जो कुछ रखे थे, कृष्ण तो जूता नहीं पहनते थे, लेकिन और जो कुछ था सामान लेकर के सब दौड़े गौओं को खोजने के लिए। जाता अनुताप, उनके मन में बहुत कष्ट हुआ, हृदय में अनुताप हुआ कि हाय हाय हम खेलने में आसक्त हो गए और हमारी गौओं पता नहीं कहाँ चली गई। न विदुर विचिन उन तो गवान गति, वो गौओं को खोज रहे थे लेकिन गति न विदुर देख नहीं पाए कि कहाँ गई। तो ताजे ताजे गौओं के खुर उभरे हुए थे और त्रिणेश तद खुर दक्षिण, खुर से कुछ घास कटे थे और दक्षिण दत्तने दांत, दांतों से घास कटे हुए थे, चढ़ते हुए गई थी तो दांतों से ताजा ताजा कटे हुए घास, खुर से कटे हुए घास इस तरह से, और गायों के चरण चिन्ह को देखते हुए आगे बढ़े, इधर गौए गई है इधर गौए गई है, तो देखते देखते गए तो मार्गम अनुगमन शब्द नष्टा दिव्या विचेत सा। अब तो ये इन लोगों का हित बड़ा दुखी था, ये होश जैसे होश रहे हो रहे थे कि हमारा तो सारा धन चला गया, नष्ट आजीव्या आजीविका का साधन नष्ट हो गया। गोपों के लिए जीविका के साधन है गौ में, उनके यहाँ और कोई दूसरा देवता नहीं था। सोचे हमारा तो सार हमारी जीविका ही चली गई। इस तरह बढ़ते 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 वे मुंजाटवी के निकट पहुंचे। मुंजाटव्यम भ्रष्ट मार्गम कंद मानम स्वगोधनम। मुंजाटवी के पास जब पहुंचे तो लोग सुन एक गौ जोर जोर से बोल रही थी और भ्रष्ट मार्गम मार्ग को भूल गई थी। प्रवेश तो कर गए लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था मुंजाटवी से। और स्वगोधनम गौए ही धन है गोपों के लिए, अपना धन इस तरह से नष्ट हो गया। वे तो बोल रहे थे संप्राप्त त्रिषिता शांत ततस्ते सम्यवर्त। गोप स्वयं ही प्यास से व्याकुल हो गए। गोपों को भी प्यास लग गई, गौ को तो लगी ही थी और शांत हो गए थक कर खोजते खोजते। तो ये लोग भी प्रवेश नहीं कर सके, वहीं रुक गए और गौ को आवाज दे रहे थे, गौ आ नहीं रही थी। तब भगवान बुलाने लगे, ता आहूता भगवता मेघ नाद मेघ गंभीर या गिरा। जैसे बादल गंभीर स्वर से गर्जन करता है, ऐसे भगवान गौओं का नाम ले लेकर के बुलाने लगे। तो जब कृष्ण बुलाए स्वनामना, अपना नाम सुन करके गौए प्रति मेदु प्रहर्षिता, तो वे भी बोलती थी। कृष्ण इधर से बुलाते थे तो वो भी बोलती थी, आवाज करती थी, लेकिन आने का रास्ता नहीं था। इतनी सांत्वना मिली कि कृष्ण आ गए हैं, वो निकलने का कोई रास्ता नहीं था। और ये गोप सखा भी भीतर प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं देख रहे थे, बहुत बिहड़ बंद। तो कृष्ण बुला रहे थे गौओं को, गौ उत्तर दे रही थी। और इसी समय अभी वो निकलना चाहती थी मुंजाटवी से, तब तक उस मुंज वन में मुंजाटवी में चारों ओर से अकस्मात आग लग गई, भयावह है यार। वर्णन करते ततः समन्तात् वनधूम केतु जदृच्छया भोक्षय कृत वनौकशान समीरितः सारथिनोल्गुणोल्मुखैः विलेलिहान स्थिर जंगमान महान। इस प्रकार गौएं जब एक जगह होकर के मुंज के वन से निकलना चाहती थी, उसी समय ततः तदैव उसी समय सारथिना समन्तात् समीरित सारथी के द्वारा चारों तरफ से उद्दीपित होकर के आग उस वन को जलाने लगी। सारथी कहते हैं हवा को, आग का सारथी है हवा, है ना? जैसे रथी के रथ को सारथी ले जाता है, ऐसे छोटी सी आग को भी हवा बहुत बड़ा बना गया, इसलिए सारथी कहा गया है हवा को, अग्नि का सारथी है। तो सारथी हवा अग्नि को और बढ़ा रहा, इसलिए उल्बर उल्म के बहुत उल्का के समान चिंगारियां निकल रही थी उसमें से। वो आग जब पकड़ ली तो हमने उल्का पात देखा है, आकाश से कभी कभी गिरता है उल्का, तो उल्का कहा तो लगता है जैसे कोई तारा टूट करके गिर रहा हो, कुछ ऐसे गिर रहा हो लंबा, उल्का इसको कहा। ऐसी भीषण आग लगी थी कि उसमें जो चिंगारियां निकल रही थी वो उल्का पात जैसा दिख रहा है। स्थिर जंगमान बेलिहान, चाहे रेंगने वाले जीव हो, चलने वाले मनुष्य आदि अथवा पेड़ पौधे, सबको जलाने लगा वो आग। वनवासियों के लिए तो वो प्रलय के समान था। इस तरह अग्नि चारों ओर लग गया, धूम केतु। अग्नि को धूम केतु कहते हैं, धूम का अर्थ होता है धुआं और केतु माने झंडा ध्वज। कहीं भी आग लगती है तो पहले धुआं ऊपर दिखाई देता है, धुआं अग्नि का झंडा, से धूम केतु कहते हैं अग्नि को। जैसे पता लग जाता है वहां आग लगी है, ये है, ये है। तो धुआं बहुत उठ रहा था और आग फैल गई। तमा पतनम परतो दबाग्नि गोपाश्च गाव प्रस्मित चिहिता। तो अपनी चारों तरफ आग लगी हुई देख करके गौएं और गोप सभी भयभीत हो गए। और गोप तुरंत श्री कृष्ण से कहने लगे, उच्चुष्ट कृष्णम सबलम प्रपन्ना जथा हरि मृत्यु भयाद्यता जनहा। तो वे गोप आकर के श्री कृष्ण और बलराम से इस तरह कहने लगे, जैसे मृत्यु के भय से जन वैष्णव जन भगवान श्री हरि से विनय करते हैं। इस जगत में सभी जीव मृत्यु से ग्रस्त है। इस जगत को मृत्यु जगत कहा गया है। गीता में भगवान ने कई बार इसको कहा है। यहां किसका शासन है? मृत्यु का। मरण यहां स्वाभाविक है। कोई किसी भी लोक में जाए कभी उसे मरना है। एज श्योर एज डेथ। किसी वस्तु की दृढ़ता का प्रतिपादन करना होता है तो उसकी उपमा देते हैं, यह मृत्यु के समान अटल है। एज श्योर एज डेथ। इस देश में इतनी इंश्योरेंस कंपनियां हैं लेकिन सब इंश्योरेंस देते हैं, तो जीवन बीमा कहते हैं, जीवन बीमा। हम जीवन बीमा क्या दोगे? मरने के बाद कुछ रुपया श्रद्धियों को दे देते हैं, तो ये तो इंश्योरेंस हुआ नहीं। इंश्योरेंस होता है तो मरने ही नहीं देता है ना। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो हम आपको मरने नहीं देंगे। और है कि रोग होगा तो उसको ठीक कर देंगे, ठीक है, लेकिन मरने से कोई नहीं बचा सकता। मरने सबको, इसलिए मरते जगत। लेकिन इस मरण से, इस दुख से कौन मुक्त कर सकता है? शास्त्र कहता है भगवान हरि, हरि एकमात्र मुक्त कर सकते हैं। कि जैसे जन्म मृत्यु से पार होने के लिए लोग भगवान हरि की शरण लेते हैं, उसी तरह से उस आग से घबरा करके गोपों ने बलराम के सहित कृष्ण की शरण लिया। सब कृष्ण की शरण में आए। क्यों कृष्ण की शरण लेते थे? इसलिए कि वे जानते थे कि नारायण का आवेश होता है कृष्ण में, तो भगवान नारायण की शरण लेने पर हमारी रक्षा हो जाएगी। और वे ये नहीं जानते थे कि यही मूल नारायण है। ये भाव था। कई विपत्तियों से उत्तराण पा गए थे। और गर्गाचार्य ने कहा था नामकरण के समय कि जो भी व्यक्ति इस बच्चे का आश्रय लेगा वो सब प्रकार के बाधा विघ्न से पार हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति इसका आश्रय लेता है तो सब प्रकार के दुर्गाड़ी कठिनाइयों से पार कर जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें नारायण है। ऐसे गर्गाचार्य के हु बहु वाक्य इस प्रकार से है, नारायण समो गुण, गुणों में यह बच्चा नारायण के समान है। लेकिन उसका वास्तविक अर्थ यह था कि गुणों में केवल नारायण ही इसके समान हो सकते हैं और कोई नहीं। गुण ही नारायण सम, गुणों में नारायण इसके समकक्ष हैं और कोई नहीं। लेकिन लोगों ने समझा कि गुणों में यह बच्चा नारायण के समान है। जो भी हो दोनों का एक ही अर्थ हो, इसीलिए लोग शरण लेते थे। गर्गाचार्य ने कहा था कि जब भी विपत्ति पड़े तो इसकी शरण लेनी चाहिए, तो भगवान नारायण रक्षा करेंगे। तो वो भयभीत होकर के त्राण त्राही करके कृष्ण की शरण में आ गए। देखिए ये है भगवान की भगवत्ता। विचार करके चलना चाहिए। आग सब सब सबके लिए लगी है, सब जल सकते हैं, लेकिन उसके बीच में कृष्ण है, तो उस आग से बचने के लिए उस लड़के की शरण ले रहे हैं। उसको आज नहीं आ सकते, वो तो पहले एक बार आग पी चुके हैं, लोग देखे हैं। और अभी तत्काल में लीला में देखे, जिस दिन काली दमन हुआ था उसी रात में कृष्ण आग को पी गए थे, तो इस प्रभाव को उन्होंने देखा था, इसलिए वे शरण में आए। कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामित विक्रम, हे कृष्ण हे कृष्ण। वास्तव में विपत्ति में भगवान का नाम ही सबसे पहला सहायक होता है। सबसे पहले बोल रहे हैं कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, हे महावीर कृष्ण जिसका पराक्रम महान है, और हे राम हे बलराम अमित विक्रम, आपके विक्रम के पराक्रम की कोई मिति नहीं है, सीमा नहीं है, असीम पराक्रम है आपने। अभी अभी देख चुके हैं कि कितना पराक्रम है। ऊपर एक असुर ले गया और एक मुष्टिका मारने से उसके मस्तक फट गया, गिर पड़ा पहाड़ जैसा असुर। तो अमित विक्रम है कि नहीं है बच्चा? वो तो अमित विक्रम है ही, देखे हैं कई बार बलराम जी के पराक्रम को देखे और कृष्ण को, इसीलिए कृष्ण को कहते हैं महावीर और बलराम जी को कहते हैं अमित पर विक्रम। विक्रम का जो पराक्रम होता दवाग्निना दह्यमानं प्रपन्नं तात्रातु मरहत। हम इस दवाग्नि से जंगल की आग से जल रहे हैं, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ, क्योंकि इसके लिए तुम योग्य हो, तुम्हारा सहज स्वरूप है अपने भक्तों की रक्षा करना, अपने स्वजनों की रक्षा करना। नूनम तद बांधवा कृष्ण। और श्री बलराम जी कृष्ण से विनय करके अब स्पेशल कृष्ण से कह रहे हैं, क्योंकि कृष्ण का प्रभाव वो देखते थे कि बलराम से ज्यादा है अधिक, तो कृष्ण से विनय कर रहे हैं। नूनम निश्चितम तद बांधवा कृष्ण, हे कृष्ण, हे परमानंद घन, हे सर्वाकर्षक, हम तुम्हारे बंधु हैं, हम और कुछ भी नहीं है इस जगत में, हम तुम्हारे हैं, तुम मेरे हो, तो तुम्हारा हो करके हमें दुख नहीं भोगना चाहिए। हमने सुना है साधु महात्माओं से कि जो कृष्ण का हो जाता है उसको दुख नहीं होता है, ये बच्चे कह रहे हैं जो कृष्ण का हो जाता है वो दुख नहीं भोगता है, तो तुम्हारा हो करके हमें दुख नहीं होना चाहिए। वयम ही सर्व धर्मज्ञ तन्नाथास्तत्परायण, हे सर्व धर्मज्ञ, किस अवसर पर क्या कर्म करना चाहिए इसको तुम जानते हो, इस समय तुम्हें अपना धर्म जानना चाहिए, तुम जानते हो हम तुम्हारे बांधव हैं। जैसे अपना परिचय एक प्रकार की तरह, हम कौन हैं तो चाहते हैं, यही आसक्ति उनको जिलाना चाहती है। ऐसा नहीं कि वो अपने घर बाल बच्चा आदि के लिए जीना चाहते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि तोड़ बांधवा, हे कृष्ण, हम तुम्हारे बंधु मात्र हैं, बस मेरा हमारे स्वरूप यही है कि हम तुम्हारे बंधु हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। और तुम नाथा स्वत परायण, हम तुम्हारे आश्रय में हैं और तुमको ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मानते हैं, तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकते हैं, अगर मर जाएंगे तो तुम्हारा संग छूट जाएगा, यही हमारे लिए सबसे बड़ा घाटा होगा, बहुत बड़ा दुख यही है, इसीलिए हम जीना चाहते हैं, फिर मर जाएंगे तो यह सांवला सलोना मुख कहाँ देखने को मिलेगा, तुम्हारे साथ कैसे खेल पाएंगे, इसीलिए हम जीना चाहते हैं कृष्ण, यह है जीने का उद्देश्य। तो इस तरह से कातर प्रार्थना जब भगवान हरि ने सुना तो उन्होंने कहा सब आंख बंद कर लो, भय मत करो, बचो निशम्य कृपणम बंधु नाम भगवान हरि। हरि का अर्थ है जो अपने शरणागत का दुख हर लेते हैं उनको हरि कहते हैं। यह श्री कृष्ण के नाम की विशेषता है, यह उनकी विशेषता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से कृष्ण का स्मरण भी करता है तो उसका दुख वे हर लेते हैं, इसलिए उनको हरि कहते हैं। अथवा सबके मन को हर लेते हैं, नेत्र को हर लेते हैं सौंदर्य से, इसलिए उनको हरि कहते हैं। तो भगवान है सर्वसमर्थ है, भक्तवात्सल्य आदि लीला से युक्त भगवान श्री कृष्ण ने कहा निमीलयत माँ भैष्ट लोचनानी इति अभासत। भगवान ने कहा लोचनानी निमीलयत, सब आंख बंद कर लो, आंख बंद कर, सब अब जलने वाले थे, चारों राग पकड़ लिया था, तो भगवान कहते हैं आंखें बंद कर लो और माँ भैष्ट भयम माँ कुरुत, भय मत करो, भय मत करो, तुम लोग नहीं जलोगे, केवल आंख बंद कर लो। भगवान श्री कृष्ण का ऐसा कहते हैं सब आंख बंद कर लिए, ऐसे केवल पलकों से ही बंद नहीं किया, हाथों से ही बंद कर लिए, लोग जब बंद करने से बच जाएंगे तो सब बंद कर लिए। और ऐसे बंद किए, बंद करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कुछ देर के बाद कहा खोलो, तो सब खोले तो देखे कि हम लोग भांडीर वन में आ गए, मुंज वन बहुत दूर है उससे, हम लोग ब्रज परिक्रमा में घूमते हुए गए हैं उससे वो दूर है, 5-6 किलोमीटर दूर। और जब वहां खोले तो देखे कि भांडीर वन में आ गए, सब आश्चर्यचकित हो गए, केवल आग का ही समन नहीं हो गया, स्थानांतरण भी हो गया। ये भगवान की विशेषता देखे, बिना सवारी के, बिना एलिवेटर के कुछ भी नहीं था वहां। तो देखे कि हम भांडिक वन में आ गए। भगवान क्षण क्षण में विलक्षण लीला करते रहते थे ब्रज में। अच्छा, तथेति मिलिताक्षेषु, जब उन्होंने कहा ठीक है, बच्चों ने कहा कि हाँ ठीक, आंख बंद करते हैं, तो जब मिलित अक्षेषु, जब अपने अक्ष आंखें बंद कर लिए, तो भगवान अग्नि उल वरण पित्वा मुखे में तत्पृचा योगाधीश विमंचकर। तो श्री कृष्ण तो योगाधीश हैं, योगेश हैं, अनंत शक्तियों को धारण करने वाले हैं। तो उस उल्वरम अग्नि को मुखे न पीतवा, उस उल्वर अग्नि को मुख से पी गए। ऐसा नहीं कि कोई पानी डालकर बुझा दिए या अग्नि शामक मंगा लिए बुझाने के लिए, आग से मुख से पी गए उस आग को। एक भक्त हैं हरीश्वरी जी, वो इस पर लिखे हैं कि एक बार भगवान आंख के सामने आग पी गए और एक बार कहे कि आंख बंद करो और तप पी गए। इस लीला का भाव क्या है? भाव ये बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का यह संकेत है कि चाहे भक्त सोया हो या जगा हो, या भक्त के सामने या परोक्ष में, सब समय मैं उसके दुख को दूर करता हूं। ये दिखाने के लिए भगवान ने लीला की, एक बार आंख के सामने आग पी, एक बार आंख बंद करा करके आग पी गए। तो किसी वैष्णव को, साधु को, भक्त को चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान सामने भी दुख हरते हैं और परोक्ष में भी दुख हर लेते हैं। इस स्वभाव को व्यक्त करने के लिए दो बार आग पिए। ततश्चे अक्षिणी उन्मिल्य, जब आग पी गए तो कृष्ण ने कहा कि आंख खोलो। जब आंख खोल, अक्षिणी उन्मिल्य, जब उन्होंने आंखें खोला तो पुनर्भांडीरम आपिता, उन्होंने देखा कि हम पुनः भांडीर वन में आ गए। जहां से अपहरण हुआ था बलराम जी का, और गौएं भी बहुत दूर चली गई थी, लोग खेलते हुए दूर चले गए थे, जहां से चालू किए थे तो वहीं आ गए भांडीरा मापिता। तो निशान विस्मिता आसन, सब विस्मित थे, आत्मानम गाष्टमोचिता। उन्होंने देखा कि गौएं भी बच गई दवारल से, हम भी बच गए। गौओं को भी हाँक करके नहीं लाना पड़ा और न बच्चों को कोई सवारी से आना पड़ा, सब भांडे पर में आ गए। तो इसलिए विस्मिता आसन, बहुत आश्चर्य में बच्चे पड़ गए। लेकिन आश्चर्य में पड़ कर भी कृष्ण को भगवान नहीं माने, नहीं माने कोई देवता है, आदमी नहीं है कृष्ण, कोई देवता है। तो देवताओं में भाई विचित्र शक्ति होती है, जैसे गणेश जी दूध पी लिए सारी दुनिया में। देवताओं की शक्ति होती है, कभी भी अपनी शक्ति को दिखा सकते हैं। पर ऐसे पापी लोग जिनके बहुत दुष्कर्म है, ये लोग इस पर विश्वास नहीं करते, इनके बुद्धि में आ ही नहीं सकता है। तो ये हो गया, कुछ ये हो गया, ये हो गया, इसको क्या हो गया, आप क्यों नहीं पीते हैं? देवता लोग कल तो शक्ति दिखाते हैं। तो कृष्ण से योग वीरजन तत् योग माया निभाव भागतम दवाग्ने आत्मा क्षमण दीक्षते मेरे अमरम। कृष्ण के इस योग वैभव को और योग के प्रभाव को देख करके गोपो ने क्या माना, अमरम मेरे, उनको एक अमर माना। भैया कृष्ण एक देवता है, ओ बहुत ज्यादा बढ़ाए कृष्ण को तो देवता बढ़ाए। वो तो अपना सखा समझते हैं, अपने बराबर का समझते हैं, अगर देवता माने तो यही ज्यादा गया कृष्ण के लिए, है कि नहीं? यही बहुत बड़ा पद हो गया उनके लिए, है कि कुमार माने, अथवा ये माने कि जब तक कृष्ण रहेंगे हम लोग मर नहीं सकते। गा सन्निवर्त सहयाने सह रामो जनार्दन वेणु विरणयम गोष्ठम अगाध गोपे रवीश। और इसके बाद जनार्दन सह रामो, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण श्री बलराम जी के साथ गौओं को इकट्ठा करके, शाम हो चुका था, संध्या कालीन टाइम हो चुका था, तो अब गोपों के साथ गए हुए और बांसुरी बजाते हुए गोष्ठम अगार आए। गोष्ठ में आए, जहाँ गौ रहते थे वो ब्रज में अपने गांव में आए, नंद गांव में आए। तो इस प्रसंग से सुखदेव गोस्वामी को याद आ गया कि इधर तो बवानल से रक्षा किए कृष्ण गोपों की और गऊं की, जंगल की आग से जल रहे थे, लेकिन इससे भी भयानक विरह की आग से गोपियां जल रही थी दिन में, सवेरे से प्रतिदिन जलती रहती थी। तो सुखदेव गोस्वामी को याद आ रहा है कि इधर तो जंगल की आग से को बुझाए बच्चों गोपों की रक्षा किए, गौओं की रक्षा किए, और ब्रज में लौट कर विरह महादावाग्नि से गोपियों की रक्षा किए। इसीलिए अब यह लीला तैयार कर रहे हैं, गोपी नाम परमानंदम आसीद गोविंद दर्शने क्षण युग शतमिव जासन जैन बिना भवत। गोपी नाम गोविंद दर्शने परमानंदम आसीद, गोविंद का दर्शन करके, गोविंद को देख करके गोष्ठ में गोपियों को परम आनंद हुआ। परम आनंद का अर्थ है कि अब उससे बढ़ करके कोई आनंद नहीं, आनंद की पराकाष्ठा परम सीमा, इसको परमानंद कहते हैं। वे दिन भर विरह दवाग्नि से जल रहे थे, झुलस रहे थे, एक एक सेकेंड उनका कैसे बीतता था, जे जासाम क्षणम अपि युग सतम इव जैन बिना भवत, जैन बिना जिस कृष्ण न बिना, कृष्ण के बिना गोपियों का एक क्षण युग सतम सैकड़ों युग जैसा बीतता था। अब इसकी तो कल्पना वही कर सकता है वास्तव में जिसे भगवान श्री कृष्ण के विषय में कभी विरहानुभूति हुई होगी। एक क्षण जिनका सैकड़ों युग के समान दिखता था। गोपी गीत में गोपियां कहते हैं कि हमारा त्रुटि जुगाए थे, त्रुटि कहते हैं एक सुई के नोक से कमल के पत्ते को छेद करने में जितना समय लगेगा उसको त्रुटि कहते हैं। जैसे सुई के नोक को कमल के पत्ते पर रखे कितना समय लगेगा उसको त्रुटि कहते हैं। तो एक त्रुटि भी कृष्ण को देखे देखे बिना उनका युग के समान दिखता था। और जब श्री कृष्ण आते थे वन से लौट करके तो उनको वे देखती थी, उस समय उनके आंखों की पलक गिरती थी, तो पलकों का गिरना भी करोड़ों युग जैसा लगता था। ये तो बाधा दे रहे हैं, इतना सुंदर भगवान है और उन्हें देखने में इतनी खुशी हो रही थी, इतना आनंद आ रहा था कि उस आनंद दर्शन में पलकों का गिरना उन्हें मर्माहत कर देता था। सबको आनंद होता था कृष्ण के ब्रज में लौटने पर, लेकिन गोपी नाम परमानंद आश्रित गोविंद दर्शन है, गोपियों को परम आनंद होता था, क्योंकि जितना विरह था उतना ही अधिक आनंद आ रहा था। तो एक श्लोक में गोपियों के भाव को सुखदेव गोस्वामी यहां व्यक्त किए। अब श्री कृष्ण के वर्षा और शरद कालीन लीलाओं का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। उधर दवाग्नि से रक्षा किए और प्रलंब का वध हुआ, ये दो घटना एक दिन हुई थी। तो बच्चे जब ब्रज में लौटे तो ये सब लगे घटना सुनाने आज की, कि आज कृष्ण ने क्या क्या किया वन में। लोग प्रतिदिन सुनने के लिए उत्सुक रहते थे, ताजा ताजा भागवत बिल्कुल आज का हुआ वो लोग सुनना चाहते थे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते तयोस्तदद्भुतम कर्मा दावाग्नेर मोक्षमात्मनः गोपाः स्त्रीभ्यः समाचख्यु प्रलम्ब वदनेव च। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दावाग्ने आत्मनः मोक्षम, दावाग्नि से अपनी रक्षा के विषय में और प्रलंब बध में बचा, और प्रलंब के बध की घटना श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारा जो घटना हुई थी, तत् अद्भुतम कर्म, कृष्ण और बलराम के इस अद्भुत कर्म को, दावाग्नि से मुक्ति दिलाने के कर्म और प्रलंब के बध के कर्म को, गोप लोग आकर के स्त्री चर्चा समाचार थे, स्त्रियों को सुनाए, ब्रज में आए तो स्त्रियों को सुनाए। यही प्रश्न होता है कि पुरुषों को क्यों नहीं सुनाए, स्त्रियों को क्यों सुनाए? इसका एक भाव लिखते हैं टीकाकार गण के, यहाँ स्त्री का अर्थ है अपनी अपनी माँ से। जो भगवान के सखा थे वे आ करके अपनी अपनी माँ से आज की घटना सुनाए, क्योंकि अपनी माता से बात करने में संकोच नहीं होता है। आज भी देखा है कि अपने पापा के पास लड़ के बैठते नहीं है, माँ के पास बैठते हैं, है ना। यहाँ लिखते हैं एक टीकाकार, असंकोचा ताय वस्त्रावि तुम, असंकोच के कारण बच्चे आया करके अपनी माँ को सुनाए कि माँ आज कृष्ण ने यह लीला किया, बलराम आज मारा असुर को, ये किया वो किया, आकर खूब ताजी ताजी खबर सुना रहे और स्त्रियां बहुत उत्सुकता से सुन रही थी। अथवा इसका एक भाव है कि श्री यशोदा दिव्य की तासम स्नेहादि विशेषता, अथवा अन्य स्त्रियां सब आकर यशोदा जी के पास रुकी हुई थी, तो बच्चे जब गए तो देखा कि नारी मंडल स्त्रियों का झुंड जुटा हुआ है, तो ये सब वहीं सुनाने लगे कि आज कृष्ण ने ये किया, बलराम ने ये किया। इसके द्वारा ये सिद्ध होता है कि इस कृष्ण कथा की अधिकारिणी स्त्रियां अधिक हैं पुरुषों की अपेक्षा, है ना। ये सब घटनाएं स्त्रियों को जाकर बच्चों ने सुनाया। नहीं, कहीं भी किसी भी कथा में स्त्रियों में स्वाभाविक श्रद्धा होती है, वो सुनती हैं। और भारतवर्ष में तो उनके जी में कान भी बहुत कम है, पुरुष तो ऑफिस में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, स्कूल जाते हैं, काम करते हैं, पुरुषों को फुर्सत नहीं रहती है, लेकिन स्त्रियों को पूरा फुर्सत रहती है। और श्रद्धा भी होती है, वो बहुत बहुत तरह का मत मतांतर प्रवर्तन नहीं करती है। तो यहाँ एक विशेष संकेत हो रहा है कि स्त्रियों को जाकर के सुना है कृष्ण लीला, कृष्ण लीला या बलराम जी की लीला को स्त्रियों से सुना है। और गोप वृद्धाश्च गोप्यश्च तदुपर कर्ण विस्मिता, जब ये सुना रहे थे तो उस समय बड़े बड़े गोप भी बैठे थे, तो वे लोग सुन करके बहुत विस्मित थी और गोपियां भी बहुत विस्मित थी। विस्मित होकर के लोग विचार करने लगे कि भाई कृष्ण बलराम है क्या। तो वो सब इस निर्णय पर पहुंचे, मेरे देव प्रव्रव राम कृष्ण ब्रजम गत, उन्होंने यही माना कि देवताओं में श्रेष्ठ देवता है भगवान विष्णु या शिव जी या ब्रह्मा जी, ये ब्रज में आए हैं, हमारा भाग्य है। देखो देवता होकर के भी हमारे पुत्र रूप में बच्चा के रूप में है, इसीलिए देखो कोई भी कृष्ण बलराम के बराबर होने का दावा मत करो। देव प्रव्रव देवेशु प्रव्रव, मतलब भगवान विष्णु और शिव जी आए इस तरह से। भाई बहुत अद्भुत कोई कर्म करता है तो लोग सोचते हैं कि क्या है। आजकल तो पाभर चीनी को कोई पाभर बालू को चीनी बना देता है तो उसको कहते हैं भगवान हो गया। प्रभुपाद जी बोले हैं एक लेक्चर में, कहते हैं कि कुछ साधु को इसलिए भगवान मान लिया गया, एक साधु ऐसा था जो पाभर बालू को चीनी बना दिया, 250 ग्राम बालू को चीनी बना दिया। तो प्रभुपाद जी कहे तो कितने का काम किया, उसमें 4 रुपये किलो चीनी था भार, तो 1 रुपये का काम किया, वो तो 1 रुपया पकड़ाओ किसी लड़के को जाकर के ला देगा चीनी। जो जीवन भर साधना करके और पाभर चीनी बना दिए तो कौन बड़ा काम किया। अरे सारी भारत की मिलें बंद हो जाती हैं और वही केवल चीनी बनाने लगता, तब माना जाता कि भाई कुछ है कि नहीं, तो अब मिल और कारखाना की जरूरत नहीं पड़े, जितना चीनी है सब वही बना रहा है, तब माना जाएगा कुछ है। ये कौन सा बना, अवर चिन्ह बना देना है, करना जो कुछ भी है, जनता अपनी दृष्टि से विचार करके किसी न किसी व्यक्ति पर कि है क्या। तो आजकल का एक फैशन हो गया है किसी को बस सीधे कहना, ये तो भगवान, ये तो भगवान। और ब्रज में भगवान कितना भी लीला कर रहा है इसको कहते ये देवता है। और आजकल आदमी का इतना अज्ञान बढ़ा हुआ है, इतना अज्ञान है कि तुच्छ जीव को जिसमें कोई विशेषता नहीं है बस तत्वम भगवान को कहूं। भगवान बनना इस युग में सबसे सरल हो गया, सबसे सस्ता है वास्तव में। बल्कि इंजीनियर डॉक्टर बनना है सब सस्ता नहीं है, है ना। भगवान बनना तो बस प्रेस में ले जाइए छपवा दीजिए कंप्लीट हो गया, छाप दिया गया भगवान हो गया। यहाँ साक्षात परब्रह्म भगवान कितनी कितनी लीला कर रहे हैं, अपनी भगवत्ता प्रकट कर रहे हैं, लेकिन ब्रज के गोप लोग कहते हैं देवता है। भगवान तो कह ही नहीं सकते। भगवान की कृपा है, देव श्रेष्ठ है, ये ब्रह्मा और शिव जी आए हुए हैं ये कहने का आशय, अथवा विष्णु और शिव आए हैं। ज्यादा बढ़ाए तो इस तरह से कहे, अभी तत्काल इतना अद्भुत कर्म देख करके अपना दे रहे हैं। अभी तत्काल ये खबर मिली इस तरह से प्रलंब को मारने की और आग पी जाने की। आजकल का कोई आदमी आग पी जाए तो उसको पता नहीं कौन उपाधि दे देंगे, पर ब्रह्म परात्पर परमात्मा, सब सारा विशेषण उसी के लिए दे दे। ये भगवान है इस तरह लीला करते। अब वर्षा काल का वर्णन कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन चल रहा है ऋतु के अनुसार। तो शरद ऋतु से चालू किया गया, हेमंत लीला नहीं पहले, हेमंत मतलब शीत जाड़े की लीला, जैसे यहाँ जाड़ा पड़ता है कुछ इसी तरह का जाड़ा इंडिया में भी पड़ता है थोड़े काल के लिए, इतना नहीं पड़ता लेकिन फिर भी पड़ता है, इसको हेमंत ऋतु कहते हैं। तो उसमें भी भगवान ने एक लीला किया, गोपियों के चीर हरण की लीला, वस्त्र हरण की। तो उस लीला, वो तो लीला बाद में है इसके। तो उसके बाद ग्रीष्म लीला, बसंत आदि की लीला का थोड़ा वर्णन करके ग्रीष्म लीला का वर्णन किए गर्मी के मौसम का। अब वर्षा काल का वर्णन कर रहे हैं। हमारे वैदिक ग्रंथों में यह रीति रही है, प्रथा है कि जब ऋतु का वर्णन किया जाता है तो उस ऋतु में होने वाले दृश्यों को देख देख करके उसके द्वारा एक बहुत बड़ा संदेश दिया जाता है, जिसको रूपक कहते हैं, उपमा कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी भी वही विधि अपनाए हैं, वर्णन कर रहे हैं ब्रज में वर्षा काल का। तो भगवान श्री कृष्ण की वर्षाकालीन लीला का वर्णन करने के पहले वर्षा काल का वर्णन किया जा रहा है और उसे दो प्रकार की शिक्षा देते हैं, हे शिक्षा और उपाध्याय शिक्षा। हे का अर्थ होता है नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए, और उपाध्याय का अर्थ है जरूर करना चाहिए। तो वो शिक्षा आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और महाराज परीक्षित की सभा में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, तो इसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये कोई साधारण लौकिक वर्णन है, यह भी भगवान की लीला का एक अंग है, ऋतु वर्णन है। पहले वर्षा का वर्णन है, इसके बाद शरद ऋतु का वर्णन है, और शरद ऋतु का वर्णन करने के बाद वेणु गीत का वर्णन आएगा। उस शरद काल में विशेष बांसुरी वादन भगवान करते थे। तब प्रारंभ कर रहे हैं, ततः प्रावर्तत प्राणीर सर्वसत्व समुद्भवा विद्योतमान परिधीर विस्फुर्जित नभस्तला। क्रम प्राप्त श्री भगवतः प्राविड सर्व किरणं वर्णितुं वृंदावन संबंधेन अत्यंत मूल्य संति तदुत्लसन्ति तद उद्दीपन रूपां ग्रीष्मवत् तत्तद् ऋतु श्रीयमेव आदौ वर्णयति वर्णन अलंकारानुसंगिकत्वेन सतां हेयोपादेयतां च दर्शयति ततो इत्यन्ये यावत् समाप्ते। ततः ग्रीष्म ऋतु के बाद सर्व सत्व समुद्भव समुद्भवा प्रावीण प्रावर्तत। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा काल आता है, है ना। सभी भारतवासी जानते हैं। एक जगह कहीं मैं पूछा, मुझे याद नहीं है कि ये क्या है, वर्षा काल है क्या, तो कोई व्यक्ति कहा कि नहीं यहाँ वर्षा है न कुछ है, कोई ऋतु नहीं है। कहीं मैं पूछा था किसी देश में, मुझे याद नहीं आ रहा है, है? अच्छा कभी भी वर्षा होती है, ओ तब यही हो सकता है, यहीं पर बताएं। मैं कोई ऋतु का नियम नहीं है, लेकिन भारतवर्ष में छह ऋतुएं होती हैं। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, प्रावीण ऋतु, प्रावीण यानी वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। दो दो महीने का एक एक ऋतु हो। तो अब वर्षा का, वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। वर्षा ऋतु मतलब सावन और भादो, सावन और भादो सब इंडियन है तो समझते होंगे, है कि नहीं। जब ये भी सावन भादो भी नहीं समझेंगे तब अब क्या कहा जाए। सावन भादो, लेकिन कुछ ही पीढ़ी में अब बाद के लड़के ये सब नहीं समझेंगे, लोप बहुत हो रहा है धीरे धीरे। सावन भादो में वर्षा होती है, इसको प्रावीण ऋतु कहते हैं, वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु की क्या विशेषता है, सर्व सत्व समुद्भवा, सब प्रकार के जीवों की वृद्धि होती है वर्षा काल में। समुद्भव का अर्थ दो है, वे विकास करते हैं, बढ़ते हैं अथवा संख्या में भी बढ़ जाते हैं वर्षा काल में। अब देखते हैं जितने भी कीट पतंग सब है बढ़ जाते हैं, मच्छर आदि भी वर्षा काल में बढ़ जाते हैं, और वृक्ष आदि बढ़ते हैं, वो फैलते हैं, मोटे हो जाते हैं। जो ग्रीष्म काल में सूख जाते हैं वो वर्षा काल में हरे भरे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो सर्व सत्व समुद्भव, सब प्रकार के जीवों की बढ़ती होती है वर्षा ऋतु में। यदि वर्षा ऋतु न आवे तो अन्य ऋतुओं के आने से कोई लाभ नहीं होगा, है ना। वर्षा ऋतु जाती है सब जीवों को पोषने के लिए। माँ है, जैसे माता का स्तन में दूध होता है, बच्चा पीता है, उसके गोद में रहता है, वैसे वर्षा ऋतु माँ है, सब प्रकार के जीवों को पोषने के लिए वर्षा ऋतु आती है। जमीन सूखी रहती है लेकिन वर्षा आते ही हरी हरी घासें सब जगह छा जाती है, खेतों में कीड़े पशु पक्षी सभी सुखी हो जाते हैं। जब विद्योतमान पर भी विस्फुर्जित न भस्तला, आकाश कैसा होता है वर्षा काल में, विद्योतमान पर भी सूर्य और चंद्रमा पर मंडल बैठते हैं। आपने देखा है कभी कभी सूर्य के चारों तरफ, चंद्रमा के चारों तरफ मंडल बैठते हैं। हमारे भारतवर्ष में ये कहा जाता है कि देवताओं का परिषद चलता है, देवताओं की सभा चलती है, बैठते हैं बारम्बार है। उसको परिधि कहते हैं। और विस्फुर्जित नभस्तला, और आकाश में बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, इस तरह से शांत नहीं रहता है आकाश, विस्फुर्जित रहता है। कभी कभी रह रह करके बादल गरजने लगता है, वज्रपात होता है, वर्षा होती है, आंधी चलती है, इसको विस्फुर्जित नभस्तला कहते हैं। तो जो आकाश पहले बादलहीन था, वही आकाश अब घने घने बादलों से, बिजली से और बादलों के गर्जन से ऐसा हो गया कि आकाश में ज्योति आच्छन्न हो गई। वर्षा काल में दिन में भी बादल छाए रहते हैं और रात में भी बादल छाते हैं कभी कभी, तो रात में बादल छाते हैं तो तारे और चंद्रमा का दिखना बंद हो जाता है, और दिन में भी जब बादल आकाश में छाते हैं तो सूरज का दिखना बंद हो जाता है। तो इसको कहते हैं ज्योति आच्छन्न, ज्योति आच्छन्न हो जाती है। वह है आकाश जो वास्तव में बहुत सुंदर लगता है इस तरह से ताराओं के साथ, सूरज के साथ, लेकिन बादल के घिरने पर उसके तारे और सूर्य आदि छिप जाते हैं आकाश के, तो बादल जब छाते हैं तो बादल में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, काले काले बादल छा जाते हैं, तो और स्पष्ट ज्योति, चंद्र सूर्य आदि दिखते नहीं, व्योम इस तरह से हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्म है, ब्रह्म का अर्थ है यह ब्रह्मकांश जीव, जीव सगुण होने पर ऐसा हो जाता है। जीव जब देह में रहता है तो उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रकट नहीं हो पाता है। वास्तविक स्वरूप जीव का है कि वह कृष्ण से प्रेम करता है, कृष्ण प्रीति करना है जीव का स्वरूप है, जीव का स्वरूप है कृष्ण के दास। लेकिन जब सगुण हो जाता है, गुण का अर्थ है देह, जब प्रकृति के द्वारा दिए हुए इस देह में आत्मबुद्धि करता है तो उसका कृष्ण प्रेम प्रकट नहीं रहता है। जिस प्रकार बादलों के छा जाने से आकाश में सूर्य चंद्र आदि की ज्योति दिखाई नहीं देती, दिन में भी इतना बादल छा जाता है, कल कोई सूर्य है लेकिन सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, चंद्रमा रहता है लेकिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। उसी तरह से हम लोगों में कृष्ण प्रेम नित्य है, सिद्ध है, लेकिन ढका हुआ है, दिखाई नहीं पड़ता। इस बादल को हटाना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यह हे शिक्षा है, इस प्रकार से हे शिक्षा है कि गुणों का आवरण नहीं होना चाहिए जीव पर। जीव स्वतः कृष्ण का नित्य दास है, तो जब ही वह समझ जाता है कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं गेह नहीं हूँ, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, और जो भक्ति योग का प्रैक्टिस करने लगता है तो आगे चल करके उस तरह से चमकता है जैसे बादलहीन आकाश में चंद्र और सूर्य चमकते हैं, उसका स्वरूप निखर जाता है। जैसे बादल छा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य खत्म हो गया या चंद्रमा या तारे खत्म हो गए, वो रहते हैं और उतनी ही जगमगाहट के साथ, लेकिन बादलों के ओट में रहते हैं, छिपे रहते हैं, केवल हवा बादलों को हटा देती है तो वो पुनः चमकने लगते हैं। यही हमारा स्वरूप है वास्तव में, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कहुना श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। इस हृदय गगन से ये माया रूपी बादल को हटाना है, मेघ हट जाएगा हमारा प्रेम प्रकट हो जाएगा, नहीं तो वो प्रेम दूसरे तरफ लगा हुआ है। बहुत सुंदर शिक्षा है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित की सभा में बोल रहे हैं इस तरह से दिखा कर, वहां रात दिन कथा चलती थी, रात्रि में भी बंद नहीं होती थी। महाराज परीक्षित भी नहीं खाए थे, सुखदेव गोस्वामी भी नहीं खाए थे, वे लोग पेशाब आदि के लिए भी नहीं उठते थे, कोई फोर्स ही नहीं था पेशाब का, रात दिन कथा सुनते थे। ये सुनकर के आपको आश्चर्य होगा, इसलिए कि हम लोग तो बाध्य हैं शारीरिक आवश्यकताओं से, हम लोग समझ ही नहीं सकते हैं कैसे कोई शरीर से ऊपर उठ जाएगा इतना और 24 घंटा बैठ सकता है, हम लोग कल्पना नहीं करेंगे। अभी आज के ही लोग नहीं कल्पना करेंगे कि आज से 10 वर्ष पहले लोग 10-10 घंटा बैठते थे कथा में, है कि नहीं? तो सुखदेव गोस्वामी इन बातों को समझाना चाहते हैं, वर्षा के वर्णन के बहाने सिद्धांत दे रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी उपादेय शिक्षा दे रहे हैं। अष्टौ मासान निपीतम जद भूम्या उदमयम वसु स्वगोभीर मुक्तुमारे भे पर्जन्य काल आगते। पर्जन्य का अर्थ सूर्य, ऐसे पर्जन्य का अर्थ होता है मेघ, लेकिन यहाँ सूर्य अर्थ है पर्जन्य। स्वगोभी अष्टौ मासान निपीतम जद भूम्या उदमयम वसु, भगवान सूर्य 8 महीने तक पृथ्वी के उदमय वसु को, जल रूपी धन को अपने किरणों से कलेक्ट करते हैं 8 महीने तक। मतलब 8 महीने तक सूर्य धरती के जल को सोखते रहते हैं, खींचते रहते हैं, लेकिन समय आने पर, वर्षा काल आने पर भगवान सूर्य उस जल को पुनः बरसा देते हैं, धरती पर बरसा देते हैं। कैसे? तो ये इसे एक शिक्षा मिलती है। ठीक इसी तरह से राजा या सरकार टैक्स वसूलती है जनता से, लेकिन कभी कभी दुर्भिक्ष पड़ने पर, अकाल पड़ने पर फिर जनता में ही वो धन बांट देती। ये आजकल की सरकार के लिए नहीं है, निश्चित है ये राजा के लिए है। आजकल की सरकार तो केवल टैक्स वसूलना जानती है बस, और कहीं लोगों को ठेका दे देती है किसी कंपनी को, बड़े आदमी को, और वो लोग केवल पैसा चूसते हैं। वो तो जनता के हितैषी होते नहीं है ठेकेदार लोग, है कि नहीं? तो ये टॉल खड़ा करके रोड पर और चार चार डॉलर पैसा लेते हैं। हमने सुना कि न्यूयॉर्क जाने में उस टनल में $4 देना पड़ता है। कोई जगह नहीं, कार पार्किंग की कुछ नहीं, केवल एक आदमी घूमने जाए न्यूयॉर्क तो कई डॉलर उसका लग जाएगा, ऐसे केवल घूम कर आए तब। क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है, कोई शासन नहीं, कुछ नहीं है। राजा का कर्तव्य है कि वह जनता से कर वसूल करे, लेकिन किसके लिए रखेगा? जनता के लिए। भगवान सूर्य 8 महीना तक जल का शोषण करते हैं, अष्टौ मासा निपीतम जल, नितरम पीतम, पीते रहते हैं, लेते हैं भूमि के जल रूपी धन को, स्वगो भी अपनी किरणों से खींचते रहते हैं। लेकिन काले आगते जब समय आता है, जरूरत पड़ती है, तो उस धन को बरसा देते हैं। वर्षा काल में सब जगह बरसा देते, समुद्र का पानी भी लेते हैं, इधर उधर का पानी लेते हैं, लेकिन सब जगह बरसा देते हैं सबके सुख के लिए। तो ये राजा को इससे सीखना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, उसमें जन्मेजय बैठे हुए थे, परीक्षित महाराज के पुत्र, वो भी कथा सुन रहे थे, आगे राजा बनेंगे, तो सिखा रहे इस तरह से राजा को चाहिए कि वो जनता से टैक्स ले, लेकिन जनता के हित नहीं उसे बरसा दे। सूर्य अपने पास एक बूंद जल नहीं रखता है कि नहीं? अपने लिए जल नहीं रखता है। इस तरह से राजा का कर्तव्य है कि वह जनता के धन को जनता की सेवा में लगा दे। पहले के राजा ऐसा होते थे, वो अपने शरीर में एक पैसा भी खर्च नहीं करते थे। हमने सुना है, पढ़ा भी है कि हमारे देश के बहुत बड़े मंत्री थे चाणक्य, चंद्रगुप्त राजा के, उस चंद्रगुप्त के वे मंत्री थे जिस चंद्रगुप्त से अलेक्जेंडर हार गया, ये सिकंदर, अलेक्जेंडर कहते हैं इसको, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो जाकर के हारा भारतवर्ष में। तो इसका सेनापति था सेल्यूकस सेनापति। तो यह गया चाणक्य पंडित से मिलने के लिए, पटना में रहते थे, पाटलिपुत्र में राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो मिलने गया तो गंगा में स्नान करके, और चाणक्य पंडित आ रहे थे अपने कुटिया की तरफ, और उस देश के प्रधानमंत्री थे, राजा के बाद उनका पद। तो उस समय वो उनके पीछे पीछे आया, और आया तो बैठा, पूछे आप कौन हैं? तो वो बताया कि मैं अलेक्जेंडर का, सिकंदर का सेनापति। तो ठीक है, ठीक है, आइए बैठिए। स्वागत किए, और उन्होंने कहा कि हमें कुछ कार्य करना है, बहुत जरूरी काम है टाइम पर। तो लिखने लगे, थोड़े देर आप वेट कीजिए। चाणक्य पंडित कुछ लिखने लगे, एक दीपक जला कर, शाम हो गया, दीपक जला करके लिख रहे थे। इसके बाद कहे, हाँ ठीक है, अब आपसे बातचीत कर लू। तो जब बातचीत चालू हो किए, तो उस दीपक को बुझा करके दूसरा दीपक जला लिए, वहीं पर वैसा ही दीपक रखा हुआ, दूसरा दीपक जला लिए। तो वो सेलुकस पूछता है कि उस दीपक के प्रकाश में ही बात हो सकती थी, इसको क्यों जला ली? उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वो कहे कि ये जो पहला काम, पहला दीपक था, इसमें सरकारी तेल लगता है, राजा का तेल लगता है, क्योंकि मैं सरकारी काम कर रहा हूँ, सरकारी कागजात देखना था, उसको पूरा करना था, इसके लिए मैं सरकारी तेल खर्च किया, और अब मेरा प्राइवेट काम है, आपसे बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपने वेतन का तेल इसमें लगाता हूँ। इस तरह के लोग हुए हैं। अब बताइए इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता वास्तव में, लेकिन वो बीता हुआ सत्य है, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात। सेलुकस अपने ग्रंथ में लिखा है धन सरकारी कर्मचारियों को ये सब पढ़ना चाहिए है कि नहीं, ये पढ़ेंगे तब नहीं खाएंगे सरकार का धन। पर क्या खा करके आदमी करेगा अंत में तो नरक जाना पड़ेगा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि खा करके और जमराज के दूतों से बच जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता,
मरना पड़ता है मनुष्य को इस तरह से।
मेरा वैदिक इतिहास बताता है एक बहुत बड़े राजा हुए राजा हरिश्चंद्र, आप सब लोगों ने सुना होगा उनकी कीर्ति बहुत बड़ी है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। तो एक दिन वो सपना में दान दे रहे थे, किसको, विश्वामित्र मुनि को, सपना देख रहे थे कि मैं दान दे रहा हूँ तो पृथ्वी दान दे दिया हूँ और कुछ पैसा भी देना है, तो पैसा दे नहीं पाए, दक्षिणा नहीं दे पाए, पृथ्वी दान दे दिए सपना में, तो सपना में दान दे दिए। और तब जब जगे सवेरे लगभग 10-11 बजे वो विश्वामित्र आए उनके राज दरबार में, कहे कि राजा तुम सत्यवादी हो ना, तो महाराज ने कहा हाँ, सपने में भी झूठ नहीं बोलते हो ना, ना सपने में भी मैं झूठ नहीं बोलते, तो सपने में तुमने आज कुछ दान दिया किसी को, तो महाराज ने कहा हाँ मैं आपको ही आज दान दिया हूँ सारी पृथ्वी, तो सारी पृथ्वी मेरी है ना, तो राजा हरिश्चंद्र कहा हाँ जब दे दिया सपने में भी दे दिया तो आपका है, तो दक्षिणा दक्षिणा देने की भी सोचा था ना, तो दक्षिणा तो राजा हरिश्चंद्र समय पर उनको थोड़ी सी भूल हो गई, वो मंत्री को कहे कि राजकोष से खजाना लाओ मतलब कोष लाओ और इनको दक्षिणा दे दो, तो जब मंगाया कि कोष लाओ तो महामुनि विश्वामित्र कहते हैं जब सारा राज दे दिया तो ये कोष तुम्हारा है कि ये हमारा, हमारे धन को हमको दे रहे हो, तब वो कहा हाँ हाँ ठीक वो गलती हो गई ये सब आपका है, फिर दो दक्षिणा। तब राजा हरिश्चंद्र कहे कि मैं अपना शरीर बेच करके आपको दक्षिणा दूंगा, जब सपना में दे चुका तो दे चुका, तो काशी नगरी को इस पृथ्वी से अलग माना, तो ये गए वहां कह रहे थे हमको कोई खरीद लो, हमको कोई खरीद लो, हमें कुछ दक्षिणा देना है, कोई उनको नहीं खरीदता है। आप जानते हैं बनारस महाश्मशान भूमि है, वहां वहां पर शरीर का संस्कार करने से भगवत धाम की प्राप्ति होती है, प्राय लोग आते रहते हैं, बहुत बड़ा श्मशान। तो एक श्मशान का अधिकारी मिला, वो कहा कि हाँ मैं तुमको खरीद सकता हूँ, पैसा दे सकता हूँ, लेकिन तुमको श्मशान भूमि में लोगों से कर वसूलना है, जो मुर्दा जलाने के लिए लाएंगे उनसे पैसा लेना है या कपड़ा लेना है। कहा ठीक है, तो लेकर के दे दो, और अपने बच्चे को और अपनी पत्नी को भी बेचे ब्राह्मण के यहाँ, बहुत शुद्ध सेवा के लिए, फूल आदि बनाने के लिए, माला आदि बनाने के लिए, तो उनकी पत्नी भी बेची गई, बच्चा भी बेचा गया। तो राजा हरिश्चंद्र श्मशान भूमि में रक्षा करने लगे श्मशान भूमि की। एक दिन की बात थी, विश्वामित्र जी को माया थी, उनका बच्चा सर्प के द्वारा दस दिया गया और उनकी पत्नी जिसका नाम सायद्या और तारा, दो नाम, वो तारा अपने बच्चे को उठा करके गोद में लेकर के श्मशान में आई, बिलाप करते हुए रोती कि हाय रे विधाता, मेरा कैसा दुर्दिन आ गया कि मेरे पति चंडाल की नौकरी कर रहे हैं, राज चला गया, यह चला गया, इकलौता बेटा मर गया, ओ मैं कितनी पापनी हूँ, कितनी अभागनी हूँ, रोती हुई बिलाप करती हुई बेचारी श्मशान में आई रात के समय, और राजा हरिश्चंद्र वहां विद्यमान थे। राजा हरिश्चंद्र उसकी आवाज से पहचान गए कि यह तारा है, यह मेरी पत्नी है, लेकिन उन पर कुछ असर नहीं हुआ उसके बिलाप का। उसके निकट गए और कहे कौन हो तुम, कौन हो, सबसे पहले इसके लिए तुम स्वर्ण मुद्रा दो, एक मुद्रा,
इस बच्चे का दाह संस्कार करने से पहले तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं तो मैं यहां नहीं करने दूंगा, अथवा वस्त्र दो। तो तारा रो रो करके कहने लगे कि आप पहचानते नहीं, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, आपके देह से जन्म हुए आपका बेटा है, हाय रे भगवान, आज इतना दिन फिर गए, आप इसके पिता होकर तो नहीं पहचानते हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपको तो आज इसका संस्कार करना चाहिए, उल्टे आप और मांग रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं, हमारे पास एक पैसा भी नहीं है और कपड़ा भी नहीं। तो राजा हरिचंद ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें देना ही पड़ेगा, मैं जब इसका पिता था तब था और तुम्हारा पति जब था तब था, इस समय मैं और कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो अपने स्वामी का दास हूँ बस, इस समय जिसका सर्विस कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, उसका दास हूँ, इस समय मैं तुम्हारा पति नहीं, इस समय मैं इसका पिता नहीं, और तुम्हें देना पड़ेगा। तो वस्त्र देने के लिए अब क्या करे, जब ही वो तारा अपना आंचल फाड़ने चली वस्त्र दान करने के, उसी समय भूकंप हो गया और भगवान प्रकट हुए, भगवान विष्णु, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र भगवान और विश्वामित्र जी भी प्रकट हुए। उन्होंने कहा धन्य हो राजा हरिश्चंद्र, जब तक सूर्य रहेगा, जब तक चंद्रमा रहेगा, जब तक गंगा रहेगी इस पृथ्वी पर, तब तक तुम्हारा जस छाया रहेगा, धन्य हो तुम। तो इसको कहते हैं सत्यनिष्ठ। राजा हरिश्चंद्र जब एक व्यक्ति के नौकर हैं तो सोचते बस नौकर हूं, इस समय मैं किसी का पति नहीं, और वास्तव में किसी भी व्यक्ति को जो काम जिस समय करना है उस समय वही बनकर करना चाहिए। जब तक हम ऑफिस में हैं, किसी के सेवक हैं तो उसी के हैं, हम घर आने के बाद किसी के पापा होंगे चाहे पति होंगे, है कि नहीं। घर पर आएंगे तो जितना स्नेह करना है, प्यार करना है, करेंगे, लेकिन जिसकी सेवा कर रहे हैं, जिसके नौकर हैं, उस समय तो उसी के हैं। ये सब इतिहास वास्तव में जन समाज में आजकल कोई सुनाता नहीं है, बताता नहीं है, इसलिए लोगों का मानस स्तर गिरता जा रहा है। और पढ़ते क्या है, लूटने वालों की बात पढ़ते हैं, चोरों के, चारा घोटाला, तो ये घोटाला, हवाला, इंडिया में अपने शब्द सुना, हमेशा थर्ड क्लास के लोगों के बारे में पढ़ रहा है आदमी अखबारों में, ये इधर उधर, तो अब क्यों नहीं वैसा बनेगा। कभी राजा हरिश्चंद्र की कथा नहीं होती है, कभी इस तरह बड़े लोगों की कथा नहीं होती, तो इस तरह से ये इतिहास साक्षी है। तो मैं राजा पर बोल रहा था कि भगवान सूर्य 8 महीने तक पृथ्वी का जल सोखते हैं, लेकिन 4 महीना खूब बढ़िया से वर्षा कर देते हैं, जिससे फसल होती है, सभी जीव सुखी रहते हैं, पृथ्वी का धन पृथ्वी को लौटा देते हैं। इस तरह से राजा को होना चाहिए, इसमें उपाध्याय शिक्षा। तडितवन्तो महामेघ चंद स्वसन वेपिता त्रीणनम जीवनम यस्य मुमुचुः करुणैव। चंद स्वसन वेपिता तडितवन्त महामेघ, वर्षा काल में महामेघ छाते हैं आकाश में, बहुत घना बादल, तो कब वर्षा करते हैं, चंद स्वसन वेपिता, जब प्रचंड हवा, स्वसन माने हवा, जब हवा उनको कपाती है, हवा से प्रेरित होकर के वर्षा करते हैं, जहां तहां वर्षा करते हैं, तो हवा चलती है और रह रह करके बिजली चमकती है, तो बिजली को बादल की आंख कहा गया है। आप देखते हैं बिजली चमकती है तो सब जगह दिखाई पड़ने लगता है, तो यहां वर्णन कर रहे सुखदेव गोस्वामी की, लगता है कि बादल बिजली रूपी आंख से देख देख करके वर्षा करता है, वो पृथ्वी जल रही है, पृथ्वी सूख गई है, इसलिए देख देख करके वर्षा करता है। विद्युत चमकते उसको बादल की आंख कहते हैं, वो आंख से देख करके पृथ्वी पर वर्षा करता है, बादल द्वारा प्रेरित होकर करता है। इसी तरह से प्रीणनम जीवनम इवम, इसी तरह से राजा दान करता है, या कोई भी धनी आदमी किसी को दान करता है, देख लेता है कि यह व्यक्ति दुखी है, इसको बहुत आवश्यकता है, तो किसी ब्राह्मण के द्वारा प्रेरित होकर के, किसी शास्त्रज्ञ के द्वारा प्रेरित होकर के वह दान करता है। हवा जो है यहाँ शास्त्रज्ञ व्यक्ति है, शास्त्र जानने वाला बताता है कि कहाँ दान करना चाहिए, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए,
तो हवा प्रेरित करता है बादल को, और तब बादल देखता है बिजली की आंख से कि हाँ यहाँ जरूरत है, तो वो वर्षा करता है। तो राजा या धनी आदमी इस तरह से शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों के निर्देशन में दान करते हैं, जहां आवश्यकता होती है वहां देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अकाल पड़ जाता है किसी क्षेत्र में, जनता अन्न के बिना मरने लगती है, तो वहां दान देते हैं। कभी कभी भूकंप हो जाता है, अभी अभी भारत में जबलपुर में भूकंप हुआ है, बहुत भयानक भूकंप हुआ, तो ऐसे अवसर पर राजा लोग या धनी पुरुष दान करते हैं। तो आवश्यकता देख देख करके बादल वर्षा करते हैं। तपह कृषा देव मीरा आशीन वर्षी असी मही जथाव कर्म तत्व संतल। तो पृथ्वी तप करते करते कृष हो गई थी ग्रीष्म के ऋतु में, लेकिन जब ही बादल वर्षा करते हैं तो पृथ्वी हरा भरा हो जाती है, पेड़ पौधे सब ठीक हो जाते हैं। तो उसी तरह से जैसे पहले सकाम पुरुष तप करते हैं, दुख भोगते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन बाद में जब उन्हें सिद्धि मिलती है तो सिद्धि पाकर के खा पीकर खूब तंदुरुस्त हो जाते हैं। पहले तो तप करना पड़ता है, बाद में सिद्धि मिलती है। तो पृथ्वी पहले तप कर रही थी, बाद में इसे पानी मिला तो खूब हरा भरा हो। एक शोक की बात सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, और खद्योतों को देखकर वर्षा काल में हम लोग देखें खद्योत, खद्योत मतलब लाइट वर्म, जुगनू, जुगनू जानते हैं है? अग्नि कीट, तो वो उसमें बिल्कुल स्मूथ लाइट होता है थोड़ा सा, और बिना बैटरी के इस तरह चक 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 जहां तहां करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, लेकिन कितनी भी संख्या में लाइट दिखाने वो भोर होने वाला नहीं, प्रकाश नहीं होता, जो कोई काम नहीं हो सकता। तो उन लोगों को वर्षा काल में उड़ते हुए देखकर सुखदेव गोस्वामी अब एक बात याद कर रहे हैं, निशा मुखेशु, निशा माने रात्रि और मुख माने पहला भाग, रात्रि के प्रथम भाग में संध्या काल में खद्योतः तमसा भांति, अंधकार के कारण जुगनू चमकते हैं, वो भी दिन में नहीं चमक सकते हैं, यदि दिन में भी उनमें लाइट रहती है, लाइट बुझती नहीं है, लेकिन दिन में सूर्य के आगे वो चमक नहीं पाते हैं। जब अंधकार होता है तब थोड़ा थोड़ा चुक चुक दिखने लगते हैं। तो तमसा भ्रांति, रात्रि के प्रथम पहर में या रात्रि में खद्योता भ्रांति, खद्योत चमकते हैं, जुगनू चमकते हैं, कह क्यों? तमसा अंधकार के कारण, और न ग्रह, उसमें ग्रह नहीं चमकते हैं, चंद्रमा छिप जाते हैं, तारे छिप जाते हैं या सूर्य छिप जाते हैं, उनका प्रकाश नहीं आ पाता है। जिसके प्रकाश से सारा जगत आलोकित होता है उसका प्रकाश छिप जाता है बादल से, और तब ये खद्योत चमकने लगते हैं। ठीक वैसे जैसे कलयुग में जथा पापेन पाखंडा नहीं वेदा कलयुगे, कलयुग में वेदों का प्रकाशन, वेदों का ज्ञान तो जगत में प्रचारित रहता नहीं है, पाखंडियों के लिखे हुए ग्रंथ जहां जहां चक चक चमकने लगते हैं, लेकिन प्रकाश क्या देंगे, क्या प्रकाश देंगे ग्रंथ? न काल का वर्णन है, न कर्म का, न ईश्वर का, न जीव का, न धर्म का, कुछ भी नहीं है ना। वेद वास्तव में प्रकाश डालता है सभी विषयों पर, जीव क्या है, देह क्या है, कर्म बंधन क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, वैकुंठ क्या है, सब विषयों पर इसकी लाइट जाती है वेद की। वेद का ही सार श्रीमद् भागवतम है, तो श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता ये सब सूर्य और चंद्रमा के समान है, इनसे सारा जगत लाभ ले सकता है, और इस सबकर लाइट देते हैं, सफिशियंट लाइट, उसमें आदमी बाइक चला सकता है, रेल चला सकता है, कोई काम कर सकता है सूर्य के प्रकाश में, चंद्रमा के प्रकाश, लेकिन ये जुगनू के प्रकाश में क्या करेगा, और कितना दूर दिखाई देगा, एक अक्षर भी नहीं दिखाई देगा उससे। परंतु पापे न अतिशय पाप के कारण कलयुग में पाखंडियों के असद वाद प्रचारित हो जाते हैं। जहां देखिए तो दूसरे के लिखे हुए किताबें भरी हुई है, पाखंडी लोग जुगनू की तरह चमक रहे हैं, क्या करेंगे। और कभी कभी तो हम लोगों से आकर के कहते हैं, अरे वो जुगनू इतना प्रकाश दे रहा था कि 1 सेंटीमीटर में आलोक हो गया, इतना तक कहते हैं। अरे असली सूरज है भगवत गीता एज इट इज, अब सारे जगत को प्रकाश दे रहा है, और अन्य लोगों के ग्रंथ जो लिखा है उसको भी प्रकाश नहीं मिल रहा है तो दूसरे को क्या मिलेगा। तो पाखंडी कहते हैं पाषंड। कलयुग में सुखदेव गोस्वामी बहुत शोक के साथ कह रहे हैं कि कलऊ युगे नहीं वेदा, वेद नहीं प्रचारित रहेंगे, मतलब भगवद गीता भागवत आदि का प्रचार नहीं हो, पाखंडियों का प्रचार खूब होगा। यही जहां तहां आश्रम बना करके जुगनू लोग चमकेंगे है ना, पाखंडियों के आश्रम बहुत ज्यादा है इस विश्व में। अब तो जब तक वो बादल छाया रहेगा तब तक वही चमके, चाहे भले चमक बहुत दूर जाए या न जाए। ये वास्तव में देखने की बात है। आप हरे कृष्ण मंदिर में लोगों को बुलाइए, कहिए, तो ये लोग सोचते हैं जैसे और लोग हैं वैसे ये लोग भी एक मत है, क्या करें, हमारी रुचि नहीं है, नहीं जाए। तो कुछ तो समझने का प्रयास करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं, तो भाई से एक बार एक व्यक्ति कहा कि आप भगवत गीता से बोल रहे हैं इस तरह से, तो व्हाई शुड आई एक्सेप्ट यू ब्लाइंडली। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, यू शुड नॉट रिजेक्ट ऑल्सो ब्लाइंडली। जब ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो ब्लाइंडली रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। ओपन योर आईज देन लुक एंड देन एक्सेप्ट और रिजेक्ट। आंख से देखो खूब अच्छा से, देख करके चाहे रिजेक्ट करो चाहे एक्सेप्ट करो, लेकिन आंख बंद करके रिजेक्ट कैसे करना है आंख बंद करके एक्सेप्ट नहीं करते हो तो रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति को समझने का प्रयास करना चाहिए। वास्तव में जो श्रील प्रभुपाद जी ने कार्य किया है, उन्होंने रियल सूरज और चंद्रमा को दिया, वे अपना कोई ग्रंथ नहीं लिखे है कि नहीं, सीधे श्रीमद भागवतम दिया है। वो श्रीमद भागवतम ले करके आए थे प्रथम खंड 3 भागों में छाप करके, और प्रभुपाद जी लिखे, मुझे विश्वास था कि लोग भागवत सुनेंगे तो कृष्ण के भक्त होंगे, उनका विश्वास था। इसके बाद भगवत गीता लिखे और सब लिखे, चैतन्य चरितामृत भक्ति रसायन श्रीमद, उन्होंने अपना नहीं दिया। आप और किसी के आश्रम में जाइए, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, किसी के मठ मंदिर में आश्रम में या संघ में संस्था में भगवान के विषय में एक पन्ना नहीं मिलेगा, एक पेज कुछ भी नहीं भगवान के बारे में है। तो किसके बारे में? गुरु के विषय में। गुरु के विषय में कुछ ग्रंथ है या और सब फालतू, भगवान के विषय में कोई ग्रंथ नहीं। केवल यही संस्था है पूरे विश्व में जिसे जिसके पास भगवान के विषय में वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स ग्रंथ है। ये तो पूरे भागवत में प्रभुपाद जी के विषय में कुछ नहीं है, ये तो श्री कृष्ण के विषय में, उनके अवतारों के विषय में सारी कथा है। ऐसे ऐसी कोई है संस्था पूरी दुनिया में कि जहां जाइए और भगवान के विषय में आपको ग्रंथ मिले? कहीं नहीं। भारतवर्ष में कुछ संस्थाएं हैं, वैष्णव संस्थाएं जिनमें है, लेकिन मैं विदेश की बात कर रहा हूं कि यहां किसी के पास भगवान के विषय में कोई ग्रंथ नहीं। कुछ है वैष्णव संस्थाएं जहां जैसे गौड़ी मठ है उसमें भागवत छपता है चलता है, चाहे और भी है वैष्णव संस्थाओं में है भगवान के विषय में ग्रंथ, वो भी भागवत छपते हैं करते हैं, लेकिन इतना सांगो पान इतना परफेक्ट कहीं नहीं है। ग्रंथ मिलेंगे तो अब जाएंगे तो कोई लाए ये बचना अमृत, तो वो शिक्षा अमृत, क्या बचना अमृत, इसमें तो प्रभुपाद का वचनामृत है, तो सीधे कृष्ण का भगवद गीता दिया जा रहा है कि नहीं? इसका वचनामृत तो उसका तो ये तो वो तो भगवद गीता और श्रीमद भागवतम वास्तव में चंद्रमा और सूर्य की तरह पूरा लाइट दे रहा है, एक दिन में लाइट दे रहा है, एक रात में लाइट दे रहा है, और उस प्रकाश में काम होता है, सब चीज को हम देख सकते हैं। तो परंतु जुगनू का तो ऐसा लाइट है कि उसके शरीर के पास की वस्तु नहीं दिखेगी, उस जुगनू के पास की भी वस्तु नहीं दिखेगी, और दूर का कहां से दिखेगा। पर कलयुग जुगे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हाय हाय, कलयुग में पाखंडियों का ग्रंथ सब जगह फैल जाएगा, साहित्य का प्रचार वेद का प्रचार नहीं होगा, ये शोक की बात है। पहले के युगों में इस तरह से पाखंडियों के ग्रंथ बांटने का अधिकार नहीं था किसी को, राजाओं के द्वारा शासन था, केवल भगवान की भक्ति होगी और कोई मत का प्रचार नहीं होगा। आज हमने देखा है भारतवर्ष में लोग ले जाकर के विदेश से कई पुस्तकें फ्री दे देते हैं, ऐसे पाखंडियों के असद ग्रंथ सब दर्शाए हुए। तो कुछ भी हो, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों जुगनू चले जाए कहीं तो प्रकाश थोड़े दे पाएंगे। है कि नहीं? हमारे यहाँ गीत गाते हैं कि लाख बार दियना करो नहीं, लाख बार दियना करोड़ बार बेसिया भोर नहीं हो, बिना सूरज के उगले अंजोर नहीं, चाहे करोड़ों करोड़ बल्ब जलाइए, ये गैस जलाइए, लालटेन जलाइए, बिजली जलाइए, जलती ही है बिजली, है कि नहीं? आप लोग देखे ही नहीं, सारी दुनिया में लाइट जलती है, सब होता है, लेकिन बिना सूरज के अंजोर नहीं हो, बिना सूरज के अंजोर नहीं हो सकता, बिना श्रीमद भागवतम के ठीक से जीव को सभी विषयों का ज्ञान मिल नहीं सकता है। भागवत का प्रकाशन बहुत जरूरी है। तो इसी संस्था के द्वारा वास्तव में सत्य बात का प्रचार हो रहा है। हम कभी कभी ऐसे जगह पर गए हैं प्रवचन करने, लोग कहते हैं स्वामी जी वो भागवत छोड़ दीजिए, आप अपना अपना अनुभव सुनाइए। ऐसे कहे हैं कई बार, को गीता भागवत सुन कहीं जरा अपना अनुभव सुनाइए। तो मैं कहता हूं मैं क्या अनुभव किया, खाने सोने के अलावा हमारा क्या अनुभव है, हम क्या सृष्टि देखे प्रलय देखे कि हम अनुभव करेंगे। इसमें सुखदेव गोस्वामी का अनुभव दिया हुआ है, भगवान कृष्ण का अनुभव है, गोपीजनों का अनुभव है, राजर्षि भरत का अनुभव है, मैत्रेय मुनि का अनुभव है, ब्रह्मा जी का अनुभव है, उनका अनुभव क्यों नहीं सुनना चाहते हो? उनका अनुभव सुनो, उनका एक्सपीरियंस सुनो, हमारा अनुभव क्या सुनना चाहते हो? हमारा कोई अनुभव नहीं है। तब जाकर लोग बता अच्छा अच्छा ठीक है तब वही सुन। इस तरह से लोग मिलते जैसे लगता है कि ये तो सब पुरानी बातें हैं, कुछ नया सुनाई, नया मैंने अटपटान, नया का मतलब होता है अटपटान, बिल्कुल गलत बात सुनाई, नया होगा तो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब तक लोग कहते आए कि विष्णु भगवान है, कृष्ण भगवान है, अगर मैं बैठूं कह दूं कि तुम भी भगवान हो हम भी भगवान हैं तो लोग मान लेंगे, सत्य कहता है, लोग निश्चित मान लेंगे। अरे आज का युग तो ऐसा है कि यदि किसी कारण से आपकी प्रसिद्धि नहीं हो रही है, फेमस नहीं हो रहे हैं, तो कपड़ा खोल करके चल दीजिए, हजारों आदमी पूजने वाले मिल जाएंगे। ये ऐसा युग है कि नहीं? केवल शर्म त्याग दीजिए तो लोग पूजा करने वाले मिल जाएंगे। यही है, कुछ जैनियों में यही होता है, कुछ ऐसे भैंस की तरह बैल की तरह घूमते हैं रोड पर और उनकी खूब पूजा करते हैं कुछ लोग, केवल लग्न रहने के कारण, और कोई बात नहीं। ऐसे शर्म त्यागी की पूजा होती है। और नहीं, भारतवर्ष की तो ऐसी दशा है कि आप किसी पेड़ के नीचे चले जाइए साधु का भेष बना करके, और उस पेड़ में चिथड़ा टांग दीजिए, फटा हुआ कपड़ा, और एक कटोरी में राख ले लीजिए, और जो भी आए उस पर राख फेंका कीजिए, बस आप एक सीध साधु बन, भसम मिलने लगा है ना। बस और नहीं तो चुपचाप हो जाइए, बोलिए मत, तब भी सिद्ध हो गए। हाँ मौनी बाबा, बोलिए मत, नग्न हो जाइए, खड़ा रह जाइए या धूल फेंकिए किसी पर, बस सिद्ध हो गए। इतना थर्ड क्लास का ब्रेन इस युग में आदमी को हो गया। और आप कहिए कि भगवान का नाम लो तो कभी नहीं, नहीं ये नाम नहीं, बोलना नहीं चाहिए। कभी कभी तो ऐसे लोग मिलते हैं भारतवर्ष में जो कहते हैं कौन नाम, अभी उनको पता ही नहीं भगवान के नाम का, तो कहते हैं वो सत नाम कोई और है, ऐसा वो बोला करते हैं खुलम खुला है। इन पाखंडियों का प्रचार कलयुग में होगा। जैसे जसोमती ने पूछा कि कब, जसोमती पूछी कि कब तक चलेगा, तो जब तक कलयुग है तब तक चलेगा ही, तो क्या किया जाएगा। भगवान वैदिक धर्म के लिए बहुत ज्यादा टाइम दिए थे, चार युग हैं, 43,20,000 वर्ष सब मिलाकर के होते हैं, तो उसमें से कलयुग तो 4,32,000 वर्ष का है, इसमें 5,000 बीत गया। तो अन्य युगों की दृष्टि से तो कलयुग बहुत कम टाइम मिला है, बाकी समय में तो सत्य धर्म का प्रचार था, तो अब क्या किया जाएगा, तो सहना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी बीच में प्रभुपाद जी जैसे सूर्य उगते हैं तो प्रकाश छा जाता है, इस प्रकाश को हम लोगों को देना चाहिए, इधर उधर बांटना चाहिए। तो रात्रि में जुगनू के उगने से याद कर रहे हैं हम सुखदेव गोस्वामी देव को, चंद्रमा का प्रकाश नहीं आ रहा है, सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है, प्रकाश देने वाले आगे जुगनू हो गए, तो उनको याद आ गए। इसी तरह से कलयुग में पाखंडियों के पंथ का खूब प्रचार होता है और वैष्णवों के पंथ का प्रचार नहीं हो रहा। तथा कथित धर्मों का कितना बड़ा प्रचार है, गली गली में हाई हाई बिल्डिंग खड़ी है, ये तो क्या नाम रखा गया उनका और वैष्णव का जो मंदिर है तो उसमें कोई रौनकता नहीं है, बहुत कम लोग आ रहे हैं। एक पाखंडी कथा कहता है तो उसकी कथा में 50,000, 30,000, 1,00,000 आदमी इंडिया में आते हैं, और कोई सार नहीं, कोई बात नहीं, और जो सत्य बात का प्रचार हो जाता है तो बादल छा जाता है, कोई प्रकाश जाता ही नहीं। हमने देखा है श्रील प्रभुपाद जी जो वृंदावन में प्रवचन करते थे तो उनका प्रवचन सुनने के लिए बाहर से एक भी आदमी नहीं आता था। हम लोग रहते थे भक्त लोग, इंडियन भक्त, हिंदी में शाम को सुनते थे, एक आज कहीं आसपास का आया तो आया। और जो दूसरे लोग प्रवचन करते थे वहीं पर हमने देखा है कर्पाती जी थे प्रवचन करते थे यार।